विचित्र बात बताई। जीव का की आपत्ति न हो तो रात दिन भजन करो, जीव का उतनी चला उतनी कमाओ जितने से निर्वाह हो जाए। एकांत में साधन करो और जीविका का साधन तभी छोड़ो जब आपको साधन में खूब आरंभ मिले और जीविका का प्रबंध हो जाए, किसी पर निर्भर रहना न पड़े। पहले साधन का दायरा बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे काम छोड़ो। छोड़ने से छूटना अच्छा है, अपने आप छूटे वो अच्छा है। ध्यान के लिए एकांत में बैठो, एकांत में मन लगता है। उत्तम स्थान उत्तम काल उसको महत्व दो। ज्यों ज्यों ध्यान में आनंद आए त्यों त्यों दुनिया की प्रवृत्ति को छोड़ते चले जाओ। अब खास बात आ रही है, भीतरी त्याग एक नंबर का है, बाहर का त्याग दो नंबर का है। दिखावटी त्याग सबसे खराब है, दंभ है। त्याग तो है नहीं, घमंडोर हो जाता है। भीतर का त्याग एक नंबर का, बाहरी त्याग दो नंबर का, दिखावटी त्याग सबसे खराब है। गोपियां भगवान को साक्षात परमात्मा समझती हुई प्रेम करती थी, अद्वैतवाद का भी निषेध करती हैं। ब्रह्म का ज्ञान अभेद रूप से नहीं जानती थी, परंतु भक्ति के अंदर ये दोष नहीं है। भक्ति में भगवान अलग और मैं अलग ऐसे मान करके साधना होती है, उसमें दोष नहीं है। गोपियों का भगवान में बहुत प्रेम था, भगवान की बंसी में ऐसा अद्भुत रस था जिसे सुनकर भी पागल सी हो जाती थी। जैसे गोपियों का भगवान में प्रेम था, वैसा ही हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। गोपियां सगुण निर्गुण साकार निराकार समग्र तत्व को जानकर ही प्रेम करती थी। गोपियों का अहेतुक परम विशुद्ध प्रेम था, वे कृष्ण को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानकर प्रेम करती थी। ऐसे हमें प्रेम करना चाहिए। हमको भगवान के साथ कैसे रास करना चाहिए, इतनी सुंदर बातें हैं, अच्छे ये बातें मिलती नहीं है। भगवान के साथ यदि आपको रास लीला करनी हो तो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करो और भगवान के नेत्र में नेत्र मिलाओ और प्रेम पूर्वक भगवान को देखो। ये नेत्र से भगवान के साथ रमण है। फिर ध्यान अवस्था में भगवान के चरणों के नूपुरों की आवाज सुनो। ये कान के द्वारा रास हो रहा है, ऐसा भी ध्यान करो कि ओहो भगवान के श्री विग्रह से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है, इसमें अमृत की तरह गंध है और मैं अपनी नासिका से उस गंध का पान कर रहा हूं। ये नाक के द्वारा रमण है। उस समय प्रेम की इतनी मुग्धता हो जाती है कि वह अपने को संभाल नहीं सकता है। ऐसे ही ध्यान अवस्था में भगवान का स्पर्श किया जाए, रोमांच हो जाता है। भगवान के इस प्रेम में यहां तक आगे बढ़ो कि भगवान मेरे साथ ही साथ हाथ मिला करके नाच रहे हैं हम और भगवान दोनों हाथ मिलाकर के नाच रहे हैं। इस प्रकार नेत्रों से दर्शन, हाथों से स्पर्श, नासिका से दिव्य गंध का ग्रहण, कान के द्वारा नूपुरों का दिव्य शब्द, ये सब इंद्रियां और मन का भगवान में रमण है। इस प्रकार का जो मधुर रस का पान है, यह सबसे बढ़कर साधन है। ये सब भाइयों बहनों को करना चाहिए। ये पवित्र शुद्ध रमण है, अन्य समस्त कामनाओं का नाश करने वाला है। एकांत में प्रभु से वार्तालाप करो, चिंतन करो, स्पर्श करो, दर्शन करो, मनन करो, आपको अपने आप में प्रेम में आनंद में मुग्ध होकर भुलाई देना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमको ऐसा महात्मा मत बनाओ जिसमें राग द्वेष हो, राग द्वेष हो ऐसा महात्मा मत बना देना। बहुत उपरामता हो तो उपरामता की मुद्रा से बहुत असर पड़ता है। वैराग्य में उपरामता में बहुत आनंद है, क्षणिक उपरामता में थोड़ा आनंद है, ज्यादा समय की उपरामता में ज्ञान बढ़ता चला जाता है, सारी वृत्तियां एकाग्र हो जाती है, अंतःकरण में सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान की विशेष जागृति रहती है। साकार उपासक ज्ञान मिश्रित मूर्ति का ध्यान करे, उसकी दो तरह से वृत्तियों का उत्थान होता है, स्वयं के प्रारब्ध के कारण अथवा दूसरों के प्रारब्ध के कारण। विषयों में दोष दर्शन करो, सत्संग भजन करो और निष्काम कर्म करो, इससे वैराग्य होगा। त्याग वैराग्य में सहायक है, विवेक से वैराग्य होता है। अभ्यास वैराग्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। खूब मनुष्य ध्यानावस्था में तन्मय हो जाए तो दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है, साधारण क्रिया का तो थोड़ा असर पड़ता है पर विशेष मात्रा होने पर ज्यादा असर पड़ता है। तितिक्षा है, ये अस्थाई चीज है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तितिक्षा की अवस्था में अभ्यास करना चाहिए। जब अकल्पित स्थिति होती है तब संसार की सत्ता आती नहीं। जागने पर जैसे स्वप्न का संसार नहीं तो स्वप्न के शरीर की सत्ता ही कहां, फिर स्वप्न के शरीर के शरीर को बाघ चाहे काटो, न शरीर है न बाघ है न स्वप्न का संसार है। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर ये संसार बाधा नहीं पहुंचा सकता। जब किसी काल में संसार की सत्ता भासती है और कभी नहीं भासती तो ये एक कल्पित अवस्था है। इस संसार की सत्ता में पूरा विश्वास हो जाए कि यह है ही नहीं, फिर सुख दुख भी समाप्त हो जाते हैं। सुख और दुख का भोग जरूर प्रारब्ध का भोग है, पर झूठ है, व्यभिचार है, ये प्रारब्ध से नहीं होता है, ये असाधन से होता है। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति, तो भगवान ने कहा काम ईश क्रोध ईश, पाप का हेतु काम है। कई आदमी पाप में प्रारब्ध को हेतु मान लेते हैं, क्या करें हमारे भाग में ऐसा है इसलिए हमने ऐसा कर लिया, ये पतन का रास्ता है। यदि ऐसा होता तो भगवान क्यों कहते कि जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम, इसको शत्रु समझो। क्यों कहते? दुख सुख के निमित्त तो प्राप्त हो जाते हैं, पर उनसे सुख दुख का होना न होना ये हमारे पर निर्भर है। अनुकूल प्रतिकूल में हर शोक नहीं होता। त्वचा के जलाने पर जब अंतःकरण का संबंध है तो त्वचा को भी उसका ज्ञान होगा, पर उसे हर्ष शोक चिंता भय आदि नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होता, वही ज्ञानी है, और यदि होता है तो वो ज्ञानी नहीं है। तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत है। एक परमात्मा की तरफ जब हमारा ध्यान चला गया तो कहां मोह है, कहां शोक है। ज्ञानी की चेष्टा आदर्श होगी, ज्ञानी की प्रकृति शुद्ध होती है, क्रिया भी शुद्ध होती है। ईश्वर और ज्ञानी आदर्श होते हैं। यदि ज्ञानी की चेष्टा आदर्श नहीं होगी तो हम लोग आदर्श किससे सीखेंगे? ज्ञानी महात्मा में किसी प्रकार आसक्ति नहीं होती तो उनमें काम क्रोध पैदा ही कैसे होंगे? जिस ज्ञान में राग द्वेष बना रहे तो ऐसे ज्ञान के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा ज्ञान हमको मत देना जिसमें राग द्वेष हो। राग द्वेष तो कुत्ते में भी होता है, फिर कुत्ते में और ज्ञानी में क्या फर्क रहा? शास्त्र के अनुसार जिसके आचरण हो उसे ही महात्मा कहेंगे। सो आदमी के कहने मात्र से महात्मा थोड़ा ही हो गया। सो आदमियों ने कह दिया साहब ये महात्मा है, ऐसे नहीं होगा। निरंतर आत्म भाव में स्थित रहो। जिस महात्मा से दोष घटते हो ऐसे महात्मा को दूर से नमस्कार करो। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा महात्मा नहीं बनावे जिसमें विकार भरे रहते हो, ऐसा महात्मा नहीं बनावे हमको। प्रारब्ध के कारण यदि आपको आश्रय देंगे तो ईश्वर पर दोष आवेगा कि पाप का फल पाप हुआ। प्रारब्ध के कारण यदि पाप को आश्रय देंगे, हमने ये पाप क्यों किया कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ था इसलिए पाप किया, तो ये पाप का दोष भगवान पर लगेगा। चोरी के फल से वापिस चोरी करना होता थोड़ा ही है। लोग कह देते हैं क्या करें, हमारे प्रारब्ध ऐसा ही था इसलिए हमने चोरी कर ली। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्रारब्ध से यदि दोष होता है तो फिर दंड क्यों मिलता है? प्रारब्ध से जो चीज होती है उसका दंड नहीं मिलता। किसी को बुखार आ गया तो दंड मिलता है क्या कि भाई तुम्हारे बुखार क्यों आ गया? कोई गिर गया, पड़ गया, बीमारी लग गई, कोई दंड नहीं देता। क्यों? कि ये प्रारब्ध का फल है। पर चोरी करेगा, पाप करेगा तो सब दंड देंगे, क्योंकि वो अज्ञानता से करता है। मनुष्य जानता नहीं प्रारब्ध से कि क्या मिलता है। प्रारब्ध से जाति, आयु और भोग, ये तीन चीज मिलते हैं। जितने दिन हमको इस शरीर में रहना है वो प्रारब्ध की आयु, जिस जाति में जन्म लिया प्रारब्ध के कारण से, जो परिस्थिति हमारे सामने आएगी वो प्रारब्ध के कारण से। जाति माने जन्म। तो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये अलग अलग जातियां हैं, तो ये प्रारब्ध के फल से है। इतने वर्ष जीवित रहेंगे ये आयु का प्रारब्ध फल है। सुख दुख का भोग है, ये प्रारब्ध का फल है। परंतु यदि हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो ये पाप हो गया, ये क्रियमाण है, इसका फल तो भोगना पड़ेगा। इसी तरह यज्ञ आदि करेंगे तो ये क्रियमाण है। ज्ञान का प्रतिबंधक आसक्ति, काम, अज्ञान, संशय, ये चीजें हैं, और इनका नाश करने के लिए भगवान बोलते हैं। तो प्रारब्ध का फल होगा तो नाश कैसे कर सकेंगे? रामचंद्र जी महाराज प्रजा को बोलते हैं कि मैं मजाक में भी असत्य नहीं बोलता। ऐसे ही ऋषियों के जो सत्य बोलने वाले महात्मा होते थे उनके श्राप सत्य हो जाते थे। कोई पूछे कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है कि परतंत्र है, तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। जैसे हम गवर्नमेंट के राज्य में स्वतंत्र भी हैं और परतंत्र भी हैं। हमको हिंदुस्तान के बाहर जाना हो तो पासपोर्ट बनाया जाना होगा, वो परतंत्र है, हम अपनी मर्जी आए नहीं जा सकते। और हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में कहीं भी हम बिना हम मर्जी से जा सकते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी लोक को छोड़कर हम नहीं जा सकते, भगवान के कानून के अंदर बंधे हुए हैं, कानून से परतंत्र हैं। परंतु किसी तरह स्वतंत्र हैं, जैसे हमने पिस्तौल का लाइसेंस लिया, उस समय हमको लाइसेंस देने वाले ने बताया कि अपनी रक्षा के लिए चलाना, कानून के विरुद्ध न चलाना, ये विधि निषेध बता दिया और कानून से हमको जकड़ दिया। अब यदि हमने अपनी मर्जी से कानून के विरुद्ध पिस्तौल चला दी तो हमको दंड मिलेगा। इसी प्रकार ईश्वर की इतनी स्वतंत्रता है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको पाप नहीं करना चाहिए, यदि करेंगे तो दंड मिलेगा। मनुष्य शरीर हमें ईश्वर से मिला है, पाप पुण्य करने में स्वतंत्र हैं। यदि स्वतंत्र नहीं हो तो इसे इनका दंड भी नहीं मिलना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल चलने की योग्यता है पर सजा मिलेगी। हम ईश्वर के और प्रकृति के स्वभाव के परतंत्र हैं, काम क्रोध के भी परतंत्र हैं, पर इसको मार सकते हैं, पिस्तौल हाथ में है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि वह इन्हें वश में कर सकता है। पाप पुण्य नया कर्म है, उसमें प्रारब्ध का हाथ नहीं है, अपनी प्रकृति का हाथ है। अपनी प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव को हम सुधार सकते हैं। ईश्वर के वश में होना चाहिए, प्रकृति के वश में नहीं होना चाहिए। प्रकृति के पंजे में से तो निकलना चाहिए। यदि भगवान पाप कराते तो उसका फल भगवान ही भोगते, और काम क्रोध प्राप्त कराता है तो काम क्रोध को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष है, उसे मार दो। जितनी हम क्रिया करते हैं ये सर्प है, और राग द्वेष है ये विष है, विष को निकाल दो, फिर भले ही सर्प को गले में डालो। प्रवृत्ति मार्ग सर्प है, राग द्वेष जहर है, उसे निकाल दो। जिसमें स्वार्थ नहीं है, अहंकार नहीं है, उसे पाप नहीं लगता है। जैसे गंगा है, जोर से बाढ़ आ जाए, हजारों साधुओं के तंबू उखड़ जाए और साधु बह जाए मर जाए, गंगा को पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही स्वार्थ रहित होकर, अहंकार रहित होकर काम करने से पाप नहीं लगता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
यस्य स्मरणमात्रेण